معزز نابینا خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ یہ پارٹ ون ہے۔ معزز نابینا خواتین و حضرات، آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے عمران سیریز کا ناول موت کا سایہ۔ یہ ماورائی نمبر ہے۔ اس کے مصنف ظہیر احمد ہے اور اسے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں محمد اظہر لطیف۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ جولیا اپنے کمرے میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک جولیا نے ہڑبڑاتے ہوئے یکلخت آنکھیں کھول دیں۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب آ کر انتہائی خوفناک انداز میں اس کا نام لیا ہو۔ کمرے میں زیرو پاور کا بلب روشن تھا۔ جولیا چند لمحے بستر پر لیٹی ادھر ادھر دیکھتی رہی، لیکن کمرے میں اس کے سوا کوئی نہیں تھا۔ جولیا، اسی لمحے جولیا کو پھر وہی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی انتہائی غراہٹ بھرے انداز میں جولیا کا نام لے رہا ہو۔ آواز سے اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ آواز کسی مرد کی تھی یا پھر کسی عورت کی۔ اس بار چونکہ جولیا نے جاگتے میں یہ آواز سنی تھی، اس لیے وہ بوکھلا کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کون ہے، کون ہے یہاں؟ جولیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ساتھ ہی اس کا ہاتھ اپنے سرہانے کے نیچے رینگ گیا۔ اس نے سرہانے کے نیچے رکھا ہوا منی پسٹل نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ایک بار پھر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جولیا، پھر وہی آواز سنائی دی، اور اس بار چونکہ آواز جولیا کے بالکل کان کے قریب سنائی دی تھی، اس لیے جولیا بھڑک کر پیچھے ہٹی اور چھلانگ لگا کر بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس نے پسٹل دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہوئے اس کا رخ اس طرف کر دیا جس طرف سے اسے غراہٹ بھری آواز سنائی دی تھی۔ کون ہے؟ میں پوچھتی ہوں کون ہے؟ تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے وہاں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اب جولیا کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے بتا رہی تھی کہ کمرے میں اس کے علاوہ کوئی بھی موجود نہیں۔ جولیا کو عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ اس کے جسم میں ہلکی ہلکی سی کپ کپا ہٹ ہونی شروع ہو گئی تھی اور اس کے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ تم جو کوئی بھی ہو میرے سامنے آؤ۔ کہاں ہو تم؟ جولیا نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس بار جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی۔ جولیا آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور اس دیوار کے پاس آ گئی جہاں سوئچ بورڈ لگا ہوا تھا۔ جولیا نے اپنا رخ پلٹائے بغیر اپنا ہاتھ سوئچ بورڈ کی طرف موڑ دیا اور ایک بٹن پریس کر دیا۔ بٹن پریس ہوتے ہی کمرے میں لائٹ آن ہو گئی۔ کمرہ خالی تھا۔ جولیا نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اس نے جھک کر اپنے بیڈ کے نیچے اور صوفے کے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ حیرت ہے، یہاں تو کوئی نہیں، پھر مجھے وہ آواز کیوں سنائی دے رہی تھی اور مجھے ایسا احساس کیوں ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی کوئی کمرے میں موجود ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ جولیا دروازے کی طرف بڑھی تاکہ دروازہ کھول کر باہر دیکھ سکے، لیکن ابھی وہ دروازے کے قریب گئی ہی تھی کہ اسے اسی لمحے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ بجلی کسی تیزی سے مڑی، لیکن اس کے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تھا، لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ دروازے کے اوپر دیوار پر بلب روشن تھا جس کی وجہ سے جولیا کا سایہ اس کے سامنے زمین پر پڑ رہا تھا۔ جولیا نے سرسری سے انداز میں اپنے سائے کی جانب دیکھا، پھر وہ دروازے کی جانب مڑ نہیں لگی تھی کہ اچانک وہ بری طرح اچھل پڑی اور ایک جھٹکے سے مڑ کر دوبارہ اپنے سائے کی جانب دیکھنے لگی۔ زمین پر نظر آنے والا اس کا سایہ عام سایوں جیسا ہی تھا، لیکن جولیا جو چیز دیکھ کر چونکی تھی وہ اس کے سائے کے سر کا حصہ تھا، جہاں اسے سائے کی جگہ ایک انسانی چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ سائے پر دکھائی دینے پر وہ چہرہ دھندلا دھندلا سا تھا، لیکن سائے کے چہرے والے حصے پر انسانی چہرے کے خد و خال دیکھ کر جولیا کی آنکھیں پھیل رہی تھی۔ جولیا نے کچھ سوچ کر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور پھر یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں اور زیادہ پھیل گئیں کہ زمین پر اس کا سایہ پڑ رہا تھا جو اس کی حرکت کرنے سے ہی حرکت کرتا تھا، لیکن اس بار جولیا کے ہاتھ ہلانے کے باوجود سایہ کا ہاتھ حرکت میں نہیں آیا۔ جولیا فوراً اپنی جگہ سے ہٹ گئی۔ اس کے ہٹنے پر اس کے سایہ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ سایہ ٹھیک اسی جگہ موجود تھا جہاں جولیا ایک لمحے پہلے کھڑی تھی۔ جولیا کے پیچھے ہٹنے کی وجہ سے اس کا سایہ جیسے اس سے الگ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ میرا سایہ مجھ سے الگ کیسے ہو گیا ہے؟ ये कैसे मुमकिन है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसी लम्हे उसने खुद से अलग अपने साए को हरकत करते देखा। उसका साया आहिस्ता आहिस्ता सिमटने वाले अंदाज में पीछे हटता जा रहा था, और फिर ये देखकर जूलिया की आंखें फट पड़ी कि साया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था, जैसे वो इंसान हो और जमीन से उठकर खड़ा हो रहा हो।
अब तो जूलिया को अपने जिस्म में वाजे कपकपाहट का एहसास होना शुरू हो गया था। साया देखते ही देखते उसके सामने इंसानी अंदाज में उठकर खड़ा हो गया था। जूलिया ने पिस्टल का रुख साई की जानिब कर रखा था। साई का चेहरा अब भी धुंधला था, लेकिन उस चेहरे पर जूलिया को जिंदगी के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। अचानक जूलिया ने साई के होंठ हिलते देखे, और फिर जूलिया को वही गुर्राहट भरी आवाज सुनाई दी जिसे सुनकर वो बेख्तियार उछल पड़ी। कौन हो तुम और ये सब क्या है तुम, जूलिया ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुम्हारा साया, साई के लब हिले। मैं जानती हूँ कि तुम मेरा साया हो, लेकिन तुम मुझसे अलग क्यों हुए हो? और ये तुम्हारा चेहरा, मुझे तुम्हारा चेहरा साफ तौर पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा, जूलिया ने हिम्मत करके बात करते हुए कहा। साई को इस तरह खड़े और बातें करता देखकर जूलिया कदरे खौफजदा हो गई थी, लेकिन वो चूंकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की डिप्टी चीफ थी, इसलिए उसके अंदर हिम्मत और जुर्रत भी कूट कूट कर भरी हुई थी, वरना इस तरह साय को खुद से अलग होते, अपनी टांगों पर खड़े होते और उसके मुंह से इंसानी आवाज निकलते देखकर कोई और होता तो तड़ से गिरकर बेहोश हो जाता। तुम मेरा चेहरा देखना चाहती हो, साय ने जिस जैसे धीरे से मुस्कुरा कर कहा। उसकी आवाज में बदस्तूर गुर्राहटपन था, जैसे ये उसके बोलने का मखसूस स्टाइल हो। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा चेहरा मैं पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, जूलिया ने कहा। हाँ, तुम मुझे देख चुकी हो जूलिया, तुम मुझे अच्छी तरह से जानती भी हो, साय ने कहा। जानती हूँ, मगर कैसे, जूलिया ने हैरतजदा लहजे में कहा। मेरा चेहरा देखो, फिर तुम्हें खुद ही याद आ जाएगा कि मैं कौन हूँ और तुमने मुझे पहले कहाँ देखा था, साय ने कहा। इसी लम्हे अचानक उसके चेहरे पर छाई हुई धुंध छटती चली गई। चेहरा किसी लड़की का था, और जूं जूं चेहरा वाजे होता जा रहा था, जूलिया का चेहरा हैरत से बिगड़ता चला जा रहा था। और फिर जैसे ही जूलिया ने इस चेहरे को पूरी तरह से पहचान लिया, तो वो बुरी तरह से उछल पड़ी। उसकी आंखों में बेपनाह खौफ उभर आया था, और वो बड़े बौखलाए हुए अंदाज में कई कदम पीछे हट गई थी। पीछे हटते हुए वो अकब में मौजूद दीवार से लगी, तो उसने बौखला कर पीछे दीवार को देखा, और फिर पलटकर एक बार फिर उस साय को देखना शुरू हो गई, जिसका चेहरा वाजे हो चुका था। वो एक लड़की का चेहरा था, जिसके नए नक्श कदीम जमाने की मिस्री मलकाओं जैसे थे। क क कटांगा देवी, ये चेहरा तो कटांगा देवी का चेहरा है, जूलिया ने हकलाती हुई आवाज में कहा। हाँ, मैं कटांगा देवी हूँ, वही कटांगा देवी जिसे तुमने इमरान के साथ मिलकर जगा कर धोखे से अकब से उसकी गर्दन काट दी थी, साय ने पहले से कई गुना ज्यादा गुर्राहट भरे लहजे में कहा। उसकी आंखों में अचानक बेपनाह सुर्खी उभर आई थी, और अब वो जूलिया की तरफ खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसकी बात सुनकर जूलिया धक से रह गई। उसके जहन के पर्दे पर फौरन कटागा देवी का वो मावराई सिलसिला उभर आया था, जब वो इमरान और चंद साथियों के साथ अफ्रीका के घने जंगलों में गए थे। इमरान को पुरेसरार तौर पर एक लड़की का कटा हुआ चेहरा मिला था, जो उसे खुद कटांगा देवी ने दिया था। कटांगा देवी, जिसे कदीम दौर में इसका चेहरा नोच कर अफ्रीका के जंगलों के खास खिते में मौजूद एक कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया था। सदियों बाद कटांगा देवी फिर से दुनिया में वापस आना चाहती थी। वो कब्र से इसी सूरत में बाहर निकल सकती थी जब उसका कटा हुआ चेहरा उसे वापस मिल जाता, और कटांगा देवी चाहती थी कि उसका कटा हुआ चेहरा इमरान उसे पहुंचाए, जिसे वो अपने चेहरे पर लगाती तो वो फिर से नई जिंदगी हासिल कर लेती और पूरी दुनिया पर राज करने के लिए उठ खड़ी होती। लेकिन इमरान और उसके साथियों ने कटांगा देवी को फना करने का प्रोग्राम बना लिया था। इमरान और जूलिया और अपने चंद साथियों समेत वो अफ्रीका के घने जंगलों के खतरनाक और पुरपेच रास्तों से होते हुए इस कब्र तक पहुंच गया था, जिसमें कटांगा देवी बरसों से दफन थी। अफ्रीका के कबीले लाहोगा के सरदार, जिसका नाम भी लाहोगा ही था, ने उन्हें कटांगा देवी की खुफिया कब्र तक पहुंचा दिया था। और फिर इमरान और उसके साथियों ने कटांगा देवी की कब्र के गिर्द घेरा डाल दिया। इमरान ने जूलिया को तलवार नुमा एक छुरा देकर कब्र के सरहाने वाले हिस्से की तरफ खड़ा कर दिया था और इसने कटांगा देवी को कब्र से बाहर आने के लिए कहा था। इसकी आवाज सुनकर कटांगा देवी कब्र में उठकर बैठ गई। इसके उठते ही इमरान ने सियाह बॉक्स में मौजूद इसका खूबसूरत मगर सियाह चेहरा उसे दे दिया था, जिसे कटांगा देवी अपने मुंह पर लगाकर नई जिंदगी हासिल कर सकती थी। लेकिन जैसे ही कटांगा देवी ने चेहरा अपने मुंह पर लगाया, इमरान के इशारे पर जूलिया ने तलवार नुमा छुरा उसकी गर्दन पर मार दिया, जिससे कटांगा देवी का सर कटकर कब्र की दूसरी जानिब गिर गया। जूलिया के सामने जो साया खड़ा था वो वही चेहरा था जो इमरान कटांगा देवी को देने के लिए अफ्रीका से जंगलों में ले गया था। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई? मैंने तो तुम्हें हलाक कर दिया था, जूलिया ने उसकी जानिब आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए कहा। हाँ, तुमने मुझे हलाक कर दिया था जूलिया, लेकिन तुम्हारे साय की वजह से मैं फना होने से बच गई। अगर तुम्हारा साया मेरी मदद न करता तो मैं फना हो गई होती, कटांगा देवी ने कहा। मेरे साय ने तुम्हारी मदद की? क्या मतलब? मेरा साया भला तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम मेरी कब्र के सरहाने पर खड़ी थी ताकि मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास न हो सके और तुम आसानी से अकब से मुझ पर वार कर सको। तुम जिस जगह खड़ी थी, तुम्हारा साया तुम्हारे दाईं तरफ जमीन पर पड़ रहा था। जब तुमने तलवार मारकर मेरी गर्दन उड़ाई थी तो मेरा सर कटकर ठीक तुम्हारे साय पर जा गिरा था और ठीक तुम्हारे सर के साय के साथ जाकर जुड़ गया था। मैंने उस वक्त अपनी जान तुम्हारे साय में मुंतकिल कर दी थी, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए वहां से तुम्हारा साया गायब भी हो गया था। लेकिन तुम्हें शायद इस बात का इल्म नहीं हुआ। इमरान ने अपने एक साथी से कहकर कब्र में मौजूद मेरे जिस्म को आग लगवा दी थी और मेरा सर एक दलदल में फेंक दिया। चूंकि मेरा जिस्म जलकर राख बन चुका था और मेरा सर दलदल में डूब गया था, इसलिए इस वक्त मैं तुमसे सबके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन चूंकि मेरी जान तुम्हारे साय में हुलूल हो गई थी, इसलिए मुझे इस साय को तुमसे अलग करके नई जिंदगी हासिल करने में वक्त लग गया था। तुम्हारा साया चूंकि मेरे साथ ही दलदल में चला गया था, इसलिए मुझे अपनी सारी ताकतें अपने चेहरे और तुम्हारे साय में मुंतकिल करने में वक्त लग गया। और अब जब मुझे मेरी सारी ताकतें वापस मिल गई हैं, तो मैं इमरान से, तुम और तुम्हारे इन साथियों से इंतकाम लेने के लिए आ गई हूँ जो मेरे मदफन के पास मौजूद थे। इनमें लाहूगा कबीले का सरदार भी शामिल था, कटांगा देवी ने कहा। तो जूलिया ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तो क्या अब तुम मुझे यहाँ हलाक करने के लिए आए हो? जूलिया ने उसे तेज नजरों से घूरते हुए कहा। तुम्हारा साया मेरे साथ है जूलिया, मैं तुम्हें हलाक जरूर करूंगी, लेकिन अभी नहीं, अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं इस साय से निकलकर तुम्हारे जिस्म में समाना चाहती हूँ ताकि मैं पहले जैसी बन जाऊं। साय की शक्ल में मुझे मेरी बहुत सी ताकतें मिल गई हैं, लेकिन अब भी ऐसी बहुत सी ताकतें हैं जो मुझे उसी वक्त तक वापस नहीं मिल सकती जब तक कि मैं तुम्हें हलाक करके तुम्हारे जिस्म में दाखिल ना हो जाऊं, कटांगा देवी ने कहा। ओह, तो अब तुम यहाँ मेरा जिस्म हासिल करने आई हो ताकि तुम मुकम्मल तौर पर इंसानी रूप में आ जाओ, जूलिया ने होठ सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए। तुम्हारा जिस्म हासिल करके ही मैं कटांगा से कटांगा देवी बन सकती हूँ, वरना मैं इस रूप में दुनिया पर राज नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे तुम्हारा जिस्म मिलेगा, मुझे मेरी देवी वाली सारी ताकतें मिल जाएंगी और फिर मैं सारी दुनिया को तस्खीर करके अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दूंगी। सारी दुनिया पर हुक्मरानी होगी सिर्फ मेरी, कटांगा देवी ने सख्त लहजे में कहा। दुनिया पर हुक्मरानी करने का तुम्हारा ये शैतानी ख्याल कभी पूरा नहीं हो सकेगा कटांगा देवी, तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकोगी। मैं तुम्हें अपना जिस्म नहीं दूंगी, कभी नहीं, जूलिया ने गुस्से लहजे में कहा। उसी लम्हे जूलिया ने कटांगा देवी के साय पर एक के बाद दीगरे गोलियां चलाना शुरू कर दी। जूलिया की चलाई हुई गोलियां कटांगा देवी के साय से यूं गुजरती चली गई जैसे वाकई उसका कोई वजूद ही ना हो। साय पर इन गोलियों का कोई असर ही नहीं हो रहा था, बल्कि मिनी पिस्टल से निकली हुई गोलियां सामने से गुजरती हुई पीछे मौजूद दीवार उधेड़ रही थी। जूलिया को गोलियां चलाते देखकर कटांगा देवी के होठों पर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट उभर आई और उसके नथनों से नागन जैसी फुनकारें निकलना शुरू हो गई। तुम्हारा ये खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जूलिया, मैं कटांगा देवी हूँ, कटांगा देवी जिस पर मौत मुसल्लत करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, कटांगा देवी ने खौफनाक अंदाज में
फुनकारते हुए कहा। जूलिया एक लम्हे के लिए अपनी चलाई हुई गोलियां जाया होते देखकर परेशान हो गई थी। फिर इसने मिनी पिस्टल का रुख कटांगा देवी के चेहरे की तरफ किया और उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। इस बार एक गोली ठीक कटांगा देवी के सर पर पड़ी। कटांगा देवी को एक हल्का सा झटका लगा, वो दो कदम पीछे हटी। उसके सर में एक सुराख सा हो गया था। कटांगा देवी के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजियत भरे तासुरात नमूदार हुए, लेकिन दूसरे लम्हे उसके सर में होने वाला सुराख गायब हो गया और कटांगा देवी का चेहरा पहले जैसा हो गया। जूलिया ने कटांगा देवी के चेहरे पर अजियत के तासुरात देख लिए थे। इसने कटांगा देवी के सर का निशाना लेते हुए मजीद दो से तीन गोलियां चलाई। कटांगा देवी को झटके लगे, वो कई कदम पीछे हटी और उसके चेहरे पर मजीद तकलीफ के तासुरात नमूदार हुए, लेकिन खुद जैसे ही उसके सर में होने वाली गोलियों के सुराख खुद ब खुद मुंदमिल होने शुरू हो गए और उसका चेहरा बहाल होता चला गया। इससे पहले कि जूलिया कटांगा देवी के सर पर मजीद गोलियां चलाती, कटांगा देवी ने अपना साया नुमा हाथ उठाकर जूलिया की जानिब कर दिया और उसने एक उंगली जूलिया की तरफ झटकी तो अचानक जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसके हाथ में पकड़ा हुआ मिनी पिस्टल गर्म होना शुरू हो गया हो। दूसरे लम्हे उसके हाथ जलने लगे। उसने बौखलाकर मिनी पिस्टल की तरफ देखा जो सुर्ख होता जा रहा था। जूलिया ने घबराकर मिनी पिस्टल नीचे फेंक दिया। पिस्टल फ्रिज पर गिरकर सुर्ख हुआ और फिर यूं पिघलता चला गया जैसे मोम गर्म होकर पिघल जाता है। पिस्टल से शायद गोलियां खत्म हो गई थी इसलिए गर्म होने और पिघलने के बावजूद कोई धमाका नहीं हुआ। ये कैसे हो गया ये पिस्टल, जूलिया ने घबराए हुए लहजे में कहा। ये मेरी ताकत का अदना सा कमाल है जूलिया, मेरी ताकतों का और नमूना देखना चाहोगी, कटांगा देवी ने उसी तरह से फुनकारते हुए कहा। उसका हाथ अब भी जूलिया की जानिब उठा हुआ था। इससे पहले कि जूलिया उससे कुछ कहती, कटांगा देवी ने हाथ को हल्का सा झटका देते हुए ऊपर उठाया तो अचानक जूलिया को यूं महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन किसी आहनी शिकंजे में फंस गई हो। जूलिया के मुंह से बेख्तियार दर्द भरी फिसकारी निकल गई। उसने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन पर रखे और इस शिकंजे से खुद को आजाद कराने की कोशिश करने लगी। उसी लम्हे कटांगा देवी का हाथ हरकत में आया और जूलिया का जिस्म यूं हवा में उठता चला गया जैसे उसकी गर्दन में रस्सी का फंदा पड़ा हुआ हो और कोई नादीदा हस्ती उस फंदे के दूसरे सिरे को खींच रही हो। जूलिया के पैर जमीन से उठ गए थे और जूलिया ने इस बुरी तरह से हाथ पांव मारने शुरू कर दिए जैसे उसे वाकई फांसी दी जा रही हो। उसकी आंखें उबल आई थी। कटांगा देवी मुसलसल हाथ ऊपर की तरफ उठाती जा रही थी और जूलिया बुरी तरह हाथ पांव मारती हुई उसके साथ हाथ के साथ साथ ऊपर उठती चली जा रही थी और फिर वो छत के साथ यूं लटकने लगी जैसे वाकई उसे रस्सी के फंदे से लटका दिया गया हो। जूलिया का दम घुट रहा था, वो हवा में लटकी बुरी तरह से हाथ पांव मार रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी आंखें उबलकर बाहर आ रही हो। इससे पहले कि जूलिया का दम घुट जाता या उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती, उसी लम्हे कटांगा देवी ने हाथ नीचे करके झटका तो जूलिया चीखती हुई जोर से फर्श पर आ गिरी जैसे किसी ने उसकी गर्दन में पड़े हुए फंदे की रस्सी ऊपर से काट दी हो। फर्श पर गिरकर जूलिया बुरी तरह से तड़पने लगी। उसके दोनों हाथ अभी तक उसकी गर्दन पर ही थे। दम घुटने की वजह से उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था और उसकी आंखों से पानी बहना शुरू हो गया था। वो तेज तेज सांसें लेती हुई बुरी तरह खांसने लगी। कटांगा देवी चंद लम्हे जूलिया को खांसते देखती रही और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई जूलिया के पास आ गई। उठो जूलिया, अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया ही नहीं, उठो, मुझे अभी तुमसे बहुत सी जरूरी बातें करनी है, उठो, उठकर खड़ी हो जाओ, कटांगा देवी ने जूलिया की तरफ देखकर उसी तरह फुनकारते हुए कहा। जूलिया ने सर उठाकर कटांगा देवी की तरफ देखा और फिर कटांगा देवी को देखकर उसके चेहरे पर कटांगा देवी के लिए शदीद नफरत के तासुरात नुमाया हो गए। जूलिया ने दोनों हाथ फर्श पर रखे और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर हनूस तकलीफ के आसार थे। क्या हुआ, तकलीफ महसूस कर रही हो अपनी गर्दन में? हूँ, मैंने तो तुम्हारी महज गर्दन ही पकड़ी थी। सोचो उस वक्त मेरा क्या हाल हुआ होगा जब तुमने तलवार से मेरी गर्दन काट कर एक तरफ फेंक दी थी, कटांगा देवी ने नफरत भरे लहजे में कहा। तुम शैतानी जुर्रियत हो कटांगा देवी, तुम्हें फना करके करना हमारे लिए जरूरी था। अगर तुम नई जिंदगी हासिल कर लेती तो तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया मुसीबत का शिकार हो जाती। तुम इस दुनिया को अपने बस में करके शैतानी दुनिया में तब्दील कर देना चाहती थी और हम तुम जैसी शैतानी जुर्रियत को ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते थे। इसीलिए मैं और इमरान अफ्रीका के घने जंगलों में तुम्हें फना करने के लिए गए थे। मैंने अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन काटी थी। काश मुझे पता होता कि तुम अभी फना नहीं हुई हो तो मैं इमरान को तुम्हारा कटा हुआ सर दलदल में ना फेंकने देती। मैं किसी बड़े पत्थर से तुम्हारा सर वहीं कुचल देती और तुम्हारे सर में आग लगाकर उसे भी तुम्हारे जिस्म के साथ जलाकर राख बना देती, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे फना करने का वही तरीका था जो इमरान ने अख्तियार किया था। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा सर तुम्हारे साए के ठीक सर वाले हिस्से पर जा गिरा था। अगर ऐसा ना होता तो मैं इसी वक्त फना हो जाती और मेरा दलदल में फेंका हुआ सर हमेशा के लिए गर्क हो जाता, कटांगा देवी ने कहा तो जूलिया ने गुस्से से होंठ भींच लिए। हूँ, तुम पहले फना नहीं हुई तो क्या हुआ, अब मैं तुम्हें फना करूंगी। जब तक तुम्हारा वजूद खत्म नहीं हो जाता मैं चैन नहीं लूंगी, समझी तुम, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। जूलिया ने अचानक लेफ्ट हुक कटांगा देवी के सर पर मारने की कोशिश की क्योंकि उसने देख लिया था कि गोलियों ने उसके साए जैसे जिस्म पर कोई असर नहीं किया, लेकिन जो गोलियां उसने कटांगा देवी के सर में मारी थी उससे ना सिर्फ कटांगा देवी के सर में सुराख बन जाते थे बल्कि कटांगा देवी को झटका लगता था और वो दो कदम पीछे भी हट जाती थी और इसके चेहरे पर तकलीफ के तासुरात भी नुमाया हो जाते थे। जूलिया ने जैसे ही कटांगा देवी के सर पर हुक मारना चाहा उसी लम्हे उसे एक जोरदार झटका लगा और वो चीखती हुई उछली और उड़ती हुई पीछे मौजूद दीवार से टकरा गई। दीवार से टकराते ही वो धप से नीचे आ गिरी। उसे यकलख्त यूं महसूस हुआ था जैसे कटांगा देवी ने हाथ हिलाए बगैर उसे उठाकर पूरी कुव्वत से पीछे उछाल दिया हो। मुझ पर हमला करने की गलती अब ना करना जूलिया, वरना इसके लिए तुम्हें ही तकलीफ करनी पड़ेगी, कटांगा देवी ने कहा और जूलिया कुर्राती हुई एक बार फिर उछली और उसने उछलकर कटांगा देवी पर हमला करना चाहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसका हवा में उठा हुआ जिसम जैसे हवा में ही रुक गया। कटांगा देवी ने फौरन हाथ उठाकर जूलिया की तरफ कर दिया था। जूलिया एक बार फिर हवा में लटक रही थी। इस बार उसकी गर्दन नहीं पकड़ी गई थी लेकिन जूलिया को साफ महसूस हो रहा था कि किसी नादीदा हस्ती ने उसे पकड़कर कमर से पकड़कर हवा में लटका दिया था। जूलिया बुरी तरह से हाथ पांव मार रही थी। कटांगा देवी ने हाथ हिलाया तो जूलिया का जिस्म हवा में ही सीधा होता चला गया। कटांगा देवी ने सर घुमाकर छत पर लगे हुए पंखे की जानिब देखा जो बंद था। कटांगा देवी ने दूसरा हाथ उठाकर पंखे की जानिब किया और हाथ को हल्का सा झटका दिया तो पंखा खुद ब खुद घूमना शुरू हो गया। पंखा खुद ब खुद चलते देखकर जूलिया की आंखों में एक बार फिर हैरत के तासुरात उभर आए। आहिस्ता आहिस्ता पंखा अपनी रफ्तार पकड़ता चला गया और फिर वो फुल स्पीड से घूमना शुरू हो गया। जैसे ही पंखे ने स्पीड पकड़ी कटांगा देवी ने जूलिया की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाया तो अचानक जूलिया का हवा में उठा हुआ जिस्म हरकत में आया और हवा में तैरता हुआ तेज रफ्तारी से घूमते हुए पंखे की तरफ बढ़ता चला गया। ये तुम क्या कर रही हो कटांगा देवी, छोड़ो मुझे, मुझे जमीन पर उतारो जल्दी, जूलिया ने चीखते हुए कहा, लेकिन कटांगा देवी जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। जूलिया हवा में बिल्कुल सीधी थी। कटांगा देवी हाथ के इशारे से उसे ठीक पंखे के नीचे ले आई और फिर उसने हाथ उठाकर ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया। ऐसा करते ही जूलिया का जिस्म पंखे की तरफ उठना शुरू हो गया। पंखे की तेज हवा से जूलिया के बाल बुरी तरह से उड़ने लगे। कटांगा देवी उसे सर के बल पंखे की तरफ ले जा रही थी। रुक जाओ कटांगा देवी, ये तुम क्या कर रही हो, मैं कहती हूँ रुक जाओ, जूलिया ने हलक से बल चीखते हुए कहा, लेकिन कटांगा देवी का हाथ न रुका। जूलिया का सर पंखे के तेज रफ्तारी से घूमते हुए परों के करीब पहुंच गया। इससे पहले कि पंखे के पर जूलिया के सर से टकराते कटांगा देवी ने अपना हाथ वहीं रोक लिया। तेज हवा से जूलिया का बुरा हाल हो रहा था। मैं चाहूँ तो इस पंखे के परों से तुम्हारी गर्दन ठीक उसी तरह से उड़ा सकती हूँ जैसे तुमने मेरी गर्दन उड़ाई थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारा जिस्म चाहिए और वो भी ठीक हालत में। मैं तुम्हारे जिस्म में तभी हुलूल कर सकती हूँ जब तुम्हारे जिस्म पर एक मामूली सी भी खराश न हो। मुझे तुम्हारा जिस्म साफ सुथरा चाहिए, हर जख्म से पाक, कटांगा देवी ने कहा। मुझे नीचे उतारो कटांगा देवी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नीचे उतारो मुझे, जूलिया ने गुस्से से चीखते हुए कहा। नहीं, अब तुम मुझसे इसी हालत में बात करो, जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती तुम्हें अब इसी तरह हवा में लटका रहना पड़ेगा, कटांगा देवी ने कहा तो जूलिया गुर्रा कर रह गई। आखिर तुम चाहती क्या हो, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। बताया तो है कि मैं यहाँ तुम्हारा जिस्म हासिल करने के लिए आई हूँ, मुझे अपना जिस्म दे दो वरना मैं तुम्हारा इस कदर भयानक हशर करती रहूंगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकती। कटांगा देवी ने कहा, मैं तुम्हें अपना जिस्म कैसे दे सकती हूँ, ये मेरा जिस्म है, किसी बच्चे का खिलौना नहीं जो मैं उठाकर तुम्हारे हाथ में दे दूँ, जूलिया ने उसी अंदाज में कहा। मैं खुद ही हासिल कर लूंगी जूलिया, बस तुम ये कह दो कि मेरा जिस्म अब तुम्हारा है और मैं जब तक चाहूँ तुम्हारे जिस्म में दाखिल हो सकती हूँ, कटांगा देवी ने कहा। उसकी बात सुनकर जूलिया चौंक पड़ी और गौर से कटांगा देवी की तरफ देखने लगी। तुम्हारा मतलब है कि जब तक मैं ये नहीं कहूंगी तुम्हें अपने जिस्म देने की इजाजत देती हूँ, इस वक्त तक तुम मेरे जिस्म में दाखिल नहीं हो सकती, जूलिया ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। हाँ, मैं अपनी मर्जी और अपनी ताकतों से तुम्हारे जिस्म हासिल नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक अब रोशन दुनिया से है, इसलिए मुझे तुम्हारे जिस्म हासिल करने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए। जब तक तुम मुझे अपनी मर्जी से नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे जिस्म में नहीं समा सकूंगी, ये मेरी मजबूरी है, कटांगा देवी ने इस बार कदरे अफसोस ज्यादा लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं तुम्हें इस शैतानी काम की इजाजत दे दूंगी, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, तुम मुझे जरूर दोगी, जरूर इजाजत दोगी, मैं तुम्हें इसके लिए मजबूर कर दूंगी, कटांगा देवी ने एक बार फिर फुनकारते हुए कहा। मुझे नीचे उतारो और फिर मुझसे बात करो, जूलिया ने मुंह बनाकर कहा। नहीं, पहले मुझे अपने जिस्म में दाखिल होने की इजाजत दो, फिर मैं तुम्हें नीचे उतारूंगी, कटांगा देवी ने कहा। नहीं, तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें अपना जिस्म नहीं दूंगी, तुम जैसी शैतानी जुर्रियत मेरा जिस्म हासिल करके शैतान के लिए आसानियां पैदा करे और पूरी दुनिया को शैतानी दुनिया में तब्दील कर दे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं, जूलिया ने गुर्रा कर कहा। तुम्हारा इनकार तुम्हारे लिए अजाब बन जाएगा जूलिया, कटांगा देवी ने गुर्राते हुए कहा। कोई परवाह नहीं, तुमने खुद भी मुझे बताया है कि तुम मुझे अपनी मर्जी से हलाक नहीं कर सकती हो और जब तक मेरा जिस्म सलामत है तुम जबरदस्ती मेरे जिस्म में घुस नहीं सकोगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ, जूलिया ने इंतहाई जहरीले लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर कटांगा देवी बुरी तरह से चौंक पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ करती, जूलिया ने अचानक अपना एक हाथ अपने दांतों में दबाया और जोर से अपनी हथेली की साइड पर काट लिया। उसके चेहरे पर शदीद तकलीफ के तासुरात नुमाया हो गए, लेकिन जूलिया ने हथेली की साइड दांतों से इस जोर से काटी थी कि इसके दांत गोश्त में घुस गए थे और इसकी हथेली की साइड से खून निकल आया था। जूलिया ने खुद ही अपना हाथ अपने दांतों से जख्मी कर लिया था। लो, मैंने खुद को जख्मी कर लिया है, अब कैसे घुसोगे तुम मेरे जिस्म में, जूलिया ने अपना जख्मी हाथ कटांगा देवी के सामने करते हुए कहा। उसका जख्मी हाथ देखकर कटांगा देवी बुरी तरह से गुर्राने लगी। ये तुमने क्या कर दिया, तुमने खुद ही अपना हाथ जख्मी कर लिया, ओ अब मैं क्या करूंगी, अब अगर तुम मुझे इजाजत भी दे दो तब भी मैं उस वक्त तक तुम्हारे जिस्म में नहीं घुस सकती जब तक कि तुम्हारे हाथ का जख्म ठीक नहीं हो जाता, कटांगा देवी ने इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। इसकी बात सुनकर जूलिया के होंठों पर इंतहाई जहरीली मुस्कुराहट आ गई। इसीलिए तो मैंने अपना हाथ जख्मी किया है ना मुराद बदरू, मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने जिस्म का एक एक हिस्सा काट कर अलग कर दूं, मैं अपने हाथों अपने जिस्म के सैकड़ों टुकड़े भी कर दूंगी, लेकिन मैं तुम जैसी शैतानी जरूरत को शैतानी मकासद के लिए अपने जिस्म में घुसने नहीं दूंगी, जूलिया ने जहरीले लहजे में कहा। तो कटांगा देवी उसे खून खुआर नजरों से घूरने लगी। इसका खूबसूरत चेहरा उसके सुर्ख आंखों की वजह से इंतहाई भयानक दिखाई देना शुरू हो गया था। वो चंद लम्हे जूलिया को कहर भरी नजरों से देखती रही और फिर उसने हाथ झटका तो जूलिया बुरी तरह से चीखती हुई नीचे आ गिरी। देखती हूँ कि तुम कब तक इस तरह खुद को नुकसान पहुंचाकर मेरी बात मानने से इनकार करती हो, मैं तुम्हारी जिंदगी में ऐसा जहर घोल दूंगी कि एक वक्त आएगा कि जब तुम खुद ही मुझे अपना जिस्म देने के लिए तैयार हो जाओगी और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है, अब मैं जा रही हूँ लेकिन मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगी, इस बार तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, अगली बार जब मैं आऊंगी तो मैं तुम्हारा इंतहाई भयानक हशर करूंगी और तुम्हारी जिंदगी इस कदर हौलनाक और तल्ख बना दूंगी कि तुम जिंदगी के बजाय मौत की तमन्ना करोगी, कटांगा देवी ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। जो मर्जी कर लेना लेकिन मेरा जवाब हर बार इनकार में ही होगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, जूलिया ने सर हिलाते हुए कहा। इसका जवाब तो वक्त आने पर मिलेगा, कटांगा देवी ने कहा और फिर इससे पहले कि जूलिया इससे मजीद कुछ कहती अचानक उसका साया धुंधला पड़ता चला गया और धुंधला होते होते वहां से गायब हो गया। जूलिया चंद लम्हे उसी तरह पड़ी वहां कराहती रही और उठकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर अब भी तकलीफ के तासुरात थे। कटांगा देवी की वापसी ने जूलिया को अंदर से बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। वो अभी जिंदा थी और इस बार वो अपने शैतानी मकासद हासिल करने के लिए जूलिया से उसका जिस्म मांग रही थी, और जाहिर है वो जूलिया के जिस्म में तभी समा सकती थी जब वो जूलिया को हलाक कर देती। जूलिया के दिमाग में आंधियां सी चल रही थी। वो इस अजीब और गरीब और खौफनाक सिचुएशन की वजह से बुरी तरह से उलझ कर रह गई थी। कटांगा देवी उस वक्त उसे जख्मी देख कर वहां से चली गई थी, लेकिन उसने जाते हुए जूलिया से कह दिया था कि वो जल्द ही वापस आएगी और इस बार वो जूलिया का इंतहाई भयानक हशर करेगी और इसकी जिंदगी इसके लिए इस कदर तंग कर देगी कि जूलिया जिंदगी के बजाय मौत की तमन्ना करने लगेगी। जूलिया चंद लम्हे सोचती रही, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अपने बिस्तर के पास आई और पलंग पर बैठ गई। उसने सर उठाकर दीवार गिर क्लॉक की तरफ देखा जिस पर रात के 8:30 बज रहे थे। जूलिया ने सोचा कि क्या उसे इमरान को अभी फोन करके कटांगा देवी के बारे में बता देना चाहिए या फिर इस सिलसिले में उसे इमरान से सुबह मिलकर बात करनी चाहिए। नहीं, इमरान से बात करने का ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं तो खुद सुबह उसके फ्लैट पर जाऊंगी और उसे सारी हकीकत से आगाह कर दूंगी। कटांगा देवी का ये रूप पहले से कहीं ज्यादा भयानक और खौफनाक है। वो मेरे साथ साथ इमरान और इन सब से बदला लेना चाहती है जो इसे फना करने के लिए उसके मदफन पर गए थे। इससे पहले कि कटांगा देवी मेरे साथ साथ इमरान और इन सबको नुकसान पहुंचाए जो हमारे साथ थे, मुझे इमरान से मिलकर जल्द से जल्द कटांगा देवी के साय से छुटकारा पाना होगा। ये सब कैसे होगा, इसके बारे में इमरान जरूर कुछ ना कुछ जानता होगा। और इस बार जोसेफ भी है, जोसेफ भी इस मामले में मेरी मदद कर सकता है, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा। कटांगा देवी ने उसे जो अटक पटक की थी उससे जूलिया का सारा जिस्म बुरी तरह से दर्द कर रहा था। और फिर जूलिया ने अपने दांत उसे जिस तरह अपने हाथ की हथेली की साइड पर काटा था वो जख्म भी हरा था जिससे अभी भी खून बह रहा था। जूलिया ने हाथ के जख्म की तरफ देखा और फिर उसे साफ करने और उसकी बैंडेज करने के लिए उठ खड़ी हुई। अफ्रीका के घने जंगलों के इंतहाई शुमाल में साहिल के किनारे लकड़ी का एक बड़ा सा कैबिन बना हुआ था। इस कैबिन में एक बूढ़ा सिया फार्म जिसके जिस पर सिवाय एक लंगोट के और कुछ नहीं था, आलती पालती मारे बैठा था। उसके बूढ़े जिस्म पर सफेद रंग से अजीबो गरीब निशानात बने हुए थे। बूढ़े के गले में छोटी छोटी इंसानी खोपड़ियों वाली कई मालाएं भी थीं। इस बूढ़े का सर गंजा था लेकिन उसकी दाढ़ी मूछें काफी हद तक बड़ी हुई थीं, जिसकी वजह से उसकी नाक और होंठ छुप गए थे। बूढ़े ने अपनी पेशानी पर सफेद रंग से एक नाग की तस्वीर बना रखी थी। नाग कुंडली मारे बैठा हुआ था और उसका फन फैला हुआ था। बूढ़े के सामने एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई थी जिस पर एक सिया रंग का दिया जल रहा था। खोपड़ी के गिर्द एक दायरा सा बना हुआ था। इस दायरे में मुख्तलिफ रंग भरे हुए थे। दिए में किसी जानवर की चर्बी जल रही थी जिससे धुआं उठ रहा था और इस धुएं की वजह से सारे केबिन में अजीब और इंतहाई नागवार बू फैली हुई थी। केबिन लकड़ी का था लेकिन अंदर से इस केबिन की दीवारों को सियाह पेंट किया गया था और केबिन चूंकि बंद था इसलिए कमरे में खासा अंधेरा फैला हुआ था। खोपड़ियों के सर पर रखे हुए दिए की रोशनी भी इस कमरे के माहौल को उजागर नहीं कर पा रही थी। इस दिए की रोशनी हैरत अंगेज तौर पर दायरे तक ही महदूद थी, या फिर बूढ़े का चेहरा ही इस रोशनी में दिखाई दे रहा था। बूढ़े की आंखें बंद थीं और वो मुंह ही मुंह में कुछ पड़ रहा था। उसी लम्हे उसे एक हल्के से खटके की आवाज सुनाई दी तो बूढ़े ने चौंक कर यकलख्त आंखें खोल दी। उसने पहले खोपड़ी की तरफ देखा और फिर सर उठाकर सामने मौजूद केबिन के बंद दरवाजे की जानिब देखने लगा। कौन आया है, बूढ़े ने ऊंची आवाज में और इंतहाई करक लहजे में पूछा। तस्माना हूँ आका, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ, बाहर से एक औरत की आवाज सुनाई थी। क्या जरूरी बात है बोलो, बूढ़े ने उसी अंदाज में कहा। मैं आपको कटांगा देवी के बारे में खबर देने के लिए आई हूँ आका, बाहर से आवाज आई तो बूढ़ा कटांगा देवी का नाम सुनकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। कटांगा देवी, ओह क्या बताना चाहती हो तुम मुझे कटांगा देवी के बारे में, बूढ़े ने तेज लहजे में कहा। मुझे अंदर आने दें आका, फिर मैं आपको कटांगा देवी के बारे में पूरी तफसील से बताती हूँ, तस्माना ने कहा। ठीक है आ जाओ अंदर, बूढ़े ने कहा। उसी लम्हे तेज सरसराहट सी हुई और दरवाजे से एक साया सा गुजर कर अंदर आ गया। कैबिन में चूंकि अंधेरा छाया हुआ था, इसलिए साया इस अंधेरे का ही जुज बन गया था। तस्माना अजीम पुजारी शगारा को आदाब करती है, साय ने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा। मैंने तुम्हारा आदाब कबूल किया, अब बताओ क्या बताना चाहती हो। तुम मुझे कटांगा देवी के बारे में, जहाँ तक मुझे याद है पिछले दिनों रोशनी की दुनिया के चंद नुमाइंदों ने कटांगा देवी का मदफन तलाश कर लिया था, और इनमें से एक आदमी के पास कटांगा देवी का मिसकाट भी था, और जो इसने कटांगा देवी को दे दिया था। लेकिन इससे पहले कि कटांगा देवी के मस्कार्ट अपने मुंह पर लगाकर नई जिंदगी हासिल करती, इस आदमी के साथ आने वाली एक औरत ने कटांगा देवी के अकब से वार करके इसकी गर्दन उड़ा दी थी। मुझे ये भी मालूम है कि रोशनी की दुनिया के इन नुमाइंदों ने कटांगा देवी के मदफन में मौजूद सर कटे जिस्म को आग लगा दी थी, और उसका कटा हुआ सर एक दलदल में फेंक दिया था, जिसमें कटांगा देवी का सर हमेशा के लिए गर्क हो गया था। इसी तरह कटांगा देवी हमेशा के लिए फना हो गई। अब जबकि कटांगा देवी फना हो गई है, तो तुम मुझे उसके बारे में मजीद क्या बताने के लिए आई हो, बूढ़े पुजारी शिगारा ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैं आपको ये बताने के लिए आई हूँ आका, कि कटांगा देवी देवी अभी फना नहीं हुई है, वो अभी जिंदा है, तस्माना ने कहा। तो बूढ़ा पुजारी शिगारा उसकी बात सुनकर यूं उछला जैसे उसे अचानक किसी इंतहाई जहरीले नाग ने डस लिया हो। वो आंखें फाड़ फाड़ कर तस्माना के साय की तरफ देखना शुरू हो गया, जैसे उसे तस्माना की बातों पर यकीन ही नहीं आया हो। कटांगा देवी फना नहीं हुई है, वो अभी जिंदा है, ये तुम क्या कह रही हो तस्माना, ये कैसे मुमकिन है। कटांगा देवी का जिस्म जल चुका है और इसका कटा हुआ सर एक दलदल में गर्क हो चुका है, और तुम कह रही हो कि वो अभी जिंदा है, बूढ़े पुजारी ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। मैं सच कह रही हूँ अजीम पुजारी, कटांगा देवी अभी जिंदा है, और वो एक ताकतवर साय के रूप में इस दुनिया में वापस भी आ गई है, तस्माना ने कहा। तो बूढ़े पुजारी के चेहरे पर मौजूद हैरत और बढ़ गई। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे मुमकिन है, बूढ़े पुजारी ने आंखें फाड़ते हुए कहा। कटांगा देवी को रोशनी की दुनिया के चंद नुमाइंदों ने हकीकी तौर पर फना करने की कोशिश की थी, और उनकी इस कोशिश में इन जंगलों के एक कबीले जो कलंगा देवी की पुजारी है के सरदार लाहूगा ने भी उसकी मदद की थी, और कटांगा देवी को जिस तरह से फना किया जाना था, रोशनी की दुनिया के नुमाइंदों ने इस पर भी पूरी तरह अमल किया था। लेकिन आका, कटांगा देवी का जब एक लड़की ने सर काटा था, तो इस लड़की का साया जमीन पर पड़ रहा था। जब कटांगा देवी का सर कटा, तो उसका कटा हुआ सर लड़की के साय के ठीक सर वाले हिस्से पर जाकर गिरा था। चूंकि कटांगा देवी का दिमाग अभी तारीक नहीं हुआ था, इसीलिए उसने साय पर गिरते ही एक खास अमल के जरिए लड़की के साय को अपने कब्जे में ले लिया, और लड़की का साया गायब हो गया था। इसके बाद रोशनी की दुनिया के नुमाइंदों ने कटांगा देवी का जिस्म भी जला डाला और उसके कटे हुए सर को एक दलदल में भी फेंक दिया था। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि कटांगा देवी ने खुद को इस लड़की के साय में दम कर लिया है जिसने उसकी गर्दन काटी थी। गर्दन कटने के बाद कटांगा देवी ने दलदल में आंखें खोल दी थी। रोशनी की दुनिया के अफराद ने एक और गलती भी की थी, जिस दलदल में उन्होंने कटांगा देवी का सर फेंका था, उसी दलदल में उन्होंने एक और आदमी को भी फेंक दिया था, जो कि ना सिर्फ जिंदा था बल्कि उसका ताल्लुक भी तारीख दुनिया से ही था। कटांगा देवी के लिए दलदल में वो आदमी बेहद काम आया, वो खुद को साय में जम करके अपनी मावराई ताकतें हासिल करना चाहती थी। इसके पास चूंकि एक इंसानी जिस्म था, इसलिए उसने दलदल में ही इस इंसान का खून पीना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी ताकतें उसे जल्द ही वापस मिल गई थी, और वो दलदल से निकलने में कामयाब हो गई थी। अब कटांगा देवी दुनिया में वापस तो आ गई है, उसका चेहरा भी उसके पास है, लेकिन वो अपने जिस्म से महरूम हो चुकी है। अब उसके लिए जरूरी है कि वो वही जिस्म हासिल कर ले जिसके साय में वो समा गई थी, इसी तरह वो नई जिंदगी हासिल कर सकती है, तस्माना ने कहा। और फिर वो बूढ़े पुजारी को वो सब बातें बताने लगी कि रोशनी के दुनिया के नुमाइंदों को किस तरह से कटांगा देवी ने अपना कटा हुआ सर पहुंचाया था, और रोशनी की दुनिया के नुमाइंदे किन किन मसाइब से गुजर कर उस मदफन तक पहुंचे थे जिसमें कटांगा देवी जिंदा हालत में मौजूद थी। ओह, हैरत अंगेज, इंतहाई हैरत अंगेज, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस कटांगा देवी के बारे में मुझे मेरी ताकतों ने बताया था कि वो हमेशा के लिए फना हो चुकी है, वो अभी तक जिंदा है, ना सिर्फ जिंदा है बल्कि वो इस दुनिया में वापस भी आ गई है और उसकी ताकतें भी उसके पास मौजूद हैं, बूढ़े पुजारी ने हैरतजदा लहजे में कहा। कटांगा देवी की ताकतें अभी महदूद हैं आका, जब तक वो इस औरत के जिस्म हासिल करके उसमें समा नहीं जाती उसकी सारी ताकतें उसे नहीं मिलेंगी। जैसे ही वो अपना मुतालबा मतलूबा इंसानी जिस्म हासिल कर लेगी उसे देवी की तमाम खसूसियात और ताकतें वापस मिल जाएंगी और फिर वो वही करेगी जो वो करना चाहती थी, तस्माना ने कहा। वो जिंदा रहकर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहती थी और सारी दुनिया पर अकेली हुक्मरानी करना चाहती थी। यही सब सब कुछ कहना चाहती हो तुम, बूढ़े पुजारी ने कहा। हाँ आका, अब भी अगर उसे इसका मतलूबा जिस्म मिल जाए तो वो देवी बन जाएगी और पूरी दुनिया में अपनी शैतानियत का जाल फैला देगी ताकि सारी की सारी दुनिया उसके कब्जे में आ जाए और वो पूरी दुनिया पर हुक्मरानी कर सके, तस्माना ने कहा। हूँ, पूरी दुनिया पर कटांगा देवी नहीं, मैं हुक्मरानी करूंगा, सिर्फ मैं। इस दुनिया को अपने शैतानी जाल में मैं फंसाऊंगा, सिर्फ मैं शगारा, जो शैतान का खास नुमाइंदा और इन जंगलों का सबसे बड़ा पुजारी हूँ, बूढ़े पुजारी ने गुर्राते हुए कहा। मैं जानती हूँ आका, लेकिन अब आपके लिए ये सब करना मुश्किल होगा। कटांगा देवी आपको ऐसा कभी नहीं करने देगी, उसे या तो आपको खत्म करना होगा या फिर आपको उसे तस्खीर करना होगा। जब तक आप उसे खत्म नहीं करेंगे या तस्खीर नहीं करेंगे आप अपना ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, और अगर आप किसी तरह से कटांगा देवी को अपने बस में कर लें तो फिर आप उसकी मदद से आसानी से और चंद ही दिनों में पूरी दुनिया को तस्खीर कर सकते हैं, तस्माना ने कहा। हाँ मैं जानता हूँ, अगर कटांगा देवी मेरे कब्जे में आ जाए तो मैं उसकी मदद से ये काम सालों की मेहनत के बजाय चंद ही दिनों में कर सकता हूँ, बूढ़े पुजारी ने कहा, जो शैतान का पुजारी शगारा था। ये पुजारी अफ्रीका के जंगलों के एक बड़े कबीले का सरदार भी था और शैतान का पुजारी भी। इसके कबीले का नाम भी उसी के नाम से मंसूब था। कबीले के वहशी बेहद लंबे तड़ंगे और खूंखार इंतहाई लड़ाका किस्म के थे, जो अपने बड़े सरदार और पुजारी शगारा के सिवा किसी से नहीं डरते थे। इस कबीले के वहशी अपने इर्द गिर्द किसी कबीले को आबाद भी नहीं होने देते थे। पुजारी शगारा खुद को इन जंगलों का तन्हा मालिक समझता था। जो कबीला उसके सामने अपना सर झुका देता था पुजारी शगारा उसे छोड़ देता था, और जो इसका हुक्म मानने से इनकार कर देता था पुजारी शगारा इस कबीले पर अपने कबीले के खूंखार वहशियों से यलगार करा देता था, और इसके कबीले के वहशी दूसरे कबीले के एक एक वहशी को इंतहाई बेरहमी और सफाकी से कत्ल कर देते थे। चाहे इनमें कोई बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा या फिर कोई औरत, शिगारा कबीले के वहशी जिन कबीलों पर हमला करते थे वापसी पर वो इस सारे कबीले को लूट कर ले आते थे, और वो जिन वहशियों को हलाक करते थे उनके सर भी काट कर अपने साथ ले आते थे। सर की खाल और बाल साफ करके वो खोपड़ियों को खुश्क करते थे। पुजारी शिगारा इन खोपड़ियों को एक जगह जमा करके इन पर शैतानी अमल करता था, जिससे खोपड़ियां सुकड़ कर इंतहाई छोटी हो जाती थी, और फिर शिगारा इन खोपड़ियों की मालाएं बनाकर अपने कबीले वालों में बांट देता था। शगारा कबीले में 800 से ज्यादा वहशी थे। इनमें से शायद ही कोई ऐसा वहशी हो जिसने सुकड़ी हुई इंसानी खोपड़ियों की माला ना पहनी हुई हो। हर एक माला में 20 खोपड़ियां पिरोई जाती थी, और पुजारी शगारा का कहना था कि इन खोपड़ियों की वजह से ना सिर्फ इनकी जिस्मानी ताकतों में इजाफा हो जाता है बल्कि वो जंगलों के दूसरे तमाम कबीलों से मुनफरिद और आला मुकाम के हामिल बन जाते हैं, जिन्हें देवताओं का कबीला भी कहा जाता है। जिस तरह से पुजारी शगारा इन जंगलों के तमाम कबीलों पर हुक्मरानी कर रहा था, इसी तरह वो कटांगा देवी की तरह सारी दुनिया पर हुक्मरानी करने के ख्वाब भी देखता रहता था। अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वो आए दिन इंसानों की भेंट भी देता रहता था और शैतानी जाप भी करता रहता था। अब भी वो अपने कबीले से दूर अलग थलग मकाम पर बने हुए इस केबिन में बैठा शैतानी जाप कर रहा था कि तस्माना उसे कटांगा देवी के जिंदा होने के बारे में बताने के लिए आ गई थी। और फिर पुजारी शिकारा जानता था कि कटांगा देवी को अगर फिर से नया वजूद मिल गया तो उसके सामने उसकी एक भी नहीं चलेगी और उसकी जगह वो पूरी दुनिया की हुक्मरान बन जाएगी। तस्माना जो पुजारी शिकारा की शैतानी ताकत और शैतानी जरूरत थी, उसका कहना था कि जब तक पुजारी शिकारा कटांगा देवी को फना नहीं कर देता या फिर उसे तस्खीर करके अपने कब्जे में नहीं कर लेता, उस वक्त तक वो अपना मकसद कभी पूरा नहीं कर सकेगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस वक्त कटांगा देवी कहाँ मौजूद है? और वो क्या कर रही है? पुजारी शगारा ने कहा, नहीं मैं अभी उसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने कटांगा देवी के बारे में कुछ भी मालूम करने की कोशिश की तो उसे मेरे बारे में सब पता चल जाएगा, और उसके पास अब भी इतनी ताकतें हैं कि वो मुझे यहाँ आकर फना कर सके। तस्माना ने कहा, ओह फिर मैं कटांगा देवी के बारे में किससे और कैसे मालूम करूँ कि वो कहाँ मौजूद है? पुजारी शगारा ने परेशान होते हुए कहा, इसके लिए आप भोपत को बुला लें, भोपत अपनी ताकतों से कटांगा देवी का पता चला सकता है, और वो आपको ये भी बता सकता है कि कटांगा देवी को आप कैसे मुसक्कर कर सकते हैं। तस्माना ने कहा, भोपत, ओह उसे बुलाने के लिए तो मुझे तवील जाप करना पड़ेगा, और वो मुझे कुछ बताने के लिए मुझसे बहुत बड़ी भेंट भी मांग सकता है। उसे मेरे कबीले के वहशी बेहद पसंद है, वो एक ही वक्त में कई कई वहशियों का खून पी जाता है। पिछली बार मैंने उसे जब अपने काम के लिए बुलाया था तो उसने मुझसे मेरे काम के बदले में मेरे कबीले के 100 वहशियों की भेंट मांग ली थी, जो मुझे देनी पड़ी। इस पर भी वो खुश नहीं हुआ था। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो मेरे कबीले के तमाम वहशियों का खून पी ले। वो बेहद वहशी और खून आशाम है, जिसे वो बुलाते हुए मुझे भी खौफ आता है। अगर उसके मिजाज के खिलाफ कोई बात हो जाए तो वो गजबनाक हो जाता है, और उससे कोई बईद नहीं कि वो मुझ पर हमलावर होकर मेरा ही खून पी जाए। पुजारी शिगारा ने कहा, जो भी है आका, उसका ताल्लुक काले शैतान से है, और जो मालूमात आपको उससे मिल सकती है वो और किसी से नहीं मिल सकती। तस्माना ने जवाब दिया, हाँ तुम ठीक कह रही हो, इसके पास पूरी दुनिया की शैतानी राज मौजूद है, और वो चूंकि महाशैतान के माबद में भी जा सकता है, इसलिए उससे कोई भी शैतानी मामला छुपा हुआ नहीं होता। पुजारी शगारा ने कहा, अगर आपको पूरी दुनिया और खास तौर पर कटांगा देवी को मुसख्खर करना है तो उसके लिए चाहे आपको अपनी सारी कबीले की भेंट देनी पड़े, आप दें और भोपत की मदद जरूर लें। वो आपको कटांगा देवी को काबू में करने के लिए ऐसे ऐसे राज बताएगा जिसका आप सोच भी नहीं सकते। तस्माना ने जवाब दिया, हूँ अगर मेरा कबीला खत्म हो गया तो फिर मैं दूसरे कबीलों पर कैसे हुक्मरानी करूंगा? इन जंगलों के कबीले मेरे साथ साथ मेरे कबीले के खूंखार वहशियों से भी डरते हैं, इनकी ही वजह से वो मेरा हुक्म मानते हैं। अगर वही ना रहे तो मैं दूसरे कबीलों पर कैसे राज कर सकूंगा? पुजारी शगारा ने कहा, उसका एक हल मैं आपको बता देती हूँ, उस पर अमल करके आप भोपत से अपने कबीले के तमाम वहशियों को बचा सकते हैं। भोपत अपने आपके कबीले के किसी वहशी को हाथ भी नहीं लगा सकेगा और आपका काम भी पूरा कर देगा। तस्माना ने कहा, ओह बहुत खूब, अगर भोपत को किसी और तरीके से रिझाया जा सकता है तो बताओ, जल्दी करो, बस मैं उसे अपने कबीले के वहशियों की भेंट नहीं देना चाहता। मेरे कबीले के वहशियों की जगह अगर वो इन जंगलों के बाकी तमाम वहशियों की भेंट मांग ले तो मैं उसे इनकार नहीं करूंगा। पुजारी शिकारा ने कहा, उसे रिझाने का यही तरीका है आका, आप उसे बुलाएं तो इससे पहले कि वो आपसे भेंट मांगे आप खुद ही उसे इन जंगलों के 2 बड़े कबीलों की भेंट देने का कह दें। जब आप उसे खुद ही भेंट देने का ऐलान कर देंगे तो वो अपनी मर्जी से आपसे मजीद भेंट नहीं मांग सकेगा। तस्माना ने कहा तो पुजारी शिकारा का चेहरा खिल उठा। बहुत खूब तस्माना, तुमने तो वाकई मुझे ऐसा हल बताया है जिस पर अमल करने से मैं अपने कबीले के वहशियों की भेंट बचा लूंगा, और इस पर भोपत को भी कोई एतराज नहीं होगा। आज तुम मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आई हो, तुमने मुझे कटांगा देवी के जिंदा होने की खबर दी है, और अब तुमने मुझे भोपत को रिझाने का एक आसान तरीका भी बता दिया है जिसकी वजह से मैं तुमसे बेहद खुश हूँ। मांगो, इस खुशी में तुम मुझसे जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। मांगो, क्या मांगती हो? पुजारी शिगारा ने कहा, ओह क्या आप सच कह रहे हैं आका, मैं आपसे अपनी मर्जी से कुछ भी मांग सकती हूँ? तस्माने ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा, हाँ, जब मैंने कह दिया है कि तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दे दूंगा तो फिर तुम्हें क्या परेशानी है? इस बार पुजारी शिगारा ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा, ओ नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, ठीक है आका, आप अपनी खुशी से जो भी मुझे देना चाहें मैं ले लूंगी। तस्माना ने बड़े इनकसाराना लहजे में कहा, ठीक है, एक मरतबा तुम मुझे कटांगा देवी को हासिल कर लेने दो, फिर जब मैं पूरी दुनिया पर कब्जा करूंगा तो मैं तुम्हें दुनिया के तमाम जंगलों की देवी बना दूंगा। तुम इन जंगलों पर तस्माना देवी बनकर राज करोगी, इसके लिए मुझे चाहे महाशैतान के माबद में जाकर उसकी मिन्नतें भी क्यों ना करनी पड़े मैं करूंगा। मैं इस वक्त तक माबद से बाहर नहीं आऊंगा जब तक महाशैतान तुम्हें जंगलों की देवी बनाने का ऐलान नहीं कर देता, शगारा ने कहा तो तस्माना के मुंह से इंतहाई मुसर्रत भरी आवाजें निकलने लगी। ओह, अगर आप मुझे इन जंगलों की देवी बना देंगे तो मेरी ताकतों में हजारों गुना इजाफा हो जाएगा आका। अगर ऐसा हुआ तो मैं देवी बनने के बाद आपकी अदना कनीज ही बनकर रहूंगी और आपके हर हुक्म के सामने अपना सर झुकाऊंगी, तस्माना ने मुसर्रत भरे लहजे में कहा। ठीक है, अब तुम जाओ। अब मुझे भोपत को बुलाना है ताकि मैं उसे कटांगा देवी को मुसख्खर करने के बारे में पूछ सकूं। अगर भोपत ने तुम्हें देख लिया तो वो सब कुछ छोड़कर तुम्हें ही मुझसे मांग लेगा, और मैं तुम्हें अभी खोना नहीं चाहता क्योंकि तुम मेरी सबसे अहम और बड़ी ताकत हो, शगारा ने कहा। ठीक है आका, मैं जाती हूँ। आप भोपत को बुला लें और उससे तसल्ली के साथ हर बात करें, तस्माना ने कहा। उसने झुक कर शगारा को आदाब किया और फिर उसका साया धीरे अंधेरे में गुम होता चला गया। तस्माना के जाते ही शगारा ने दाएं पहलू के पास रखी हुई एक बड़ी सी हड्डी निकाली। यह हड्डी हल्के नीले रंग की थी और इस हड्डी पर स्याह रंग के छोटे छोटे धब्बे से थे। शगारा ने हड्डी अपनी पेशानी से लगा ली और आंखें बंद करके मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। चंद लम्हों तक वो इसी तरह हड्डी माथे से लगाए कुछ पढ़ता रहा, और फिर उसने आंखें खोली और फिर उसने वो हड्डी सामने दायरे में रखी हुई खोपड़ी के सर से लगा दी। कतूरी, पाताल के भोपत को मेरा पैगाम दो कि वो जहां भी है और जिस हाल में भी है फौरन मेरे पास आ जाए, शगारा ने खोपड़ी की जानिब देखते हुए इंतहाई करप लहजे में कहा। उसी लम्हे खोपड़ी की आंखों के सुराख में सुर्ख रंग की रोशनी सी चमकी और मादूम हो गई। अभी चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि अचानक केबिन में अजीब और इंतहाई नागवार सी बू फैल गई और साथ ही किसी सांड की तेज तेज सांस लेने की आवाज भी सुनाई देने लगी। भोपत, क्या तुम आ गए हो, शगारा ने सर उठाकर इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, मैं आ गया हूँ, अचानक एक गुर्राती हुई इंतहाई भयानक आवाज सुनाई दी। साथ ही शगारा के सामने जमीन से धुआं सा निकला और बुलंद होता हुआ एक जगह जमा हो गया। दूसरे लम्हे उस धुएं में सफेद रंग की एक भयानक मखलूक दिखाई देने लगी। इस मखलूक का सारा वजूद सफेद रंग के बड़े बड़े बालों से भरा हुआ था। उसका चेहरा इंसानी था लेकिन चेहरे के खदोखाल इंतहाई डरावने थे। उसकी नाक पिचकी हुई थी, गाल फूले हुए थे, आंखें बाहर को उबली हुई थी और उसके मोटे होंठ मोटे मोटे जो स्याही माइल थे, उसके होठों से जर्द रंग के लंबे और नोकीले दांत बाहर को निकले हुए दिखाई दे रहे थे। इस मखलूक के हाथ पांव भी बेहद बड़े बड़े थे। इसके हाथों और पैरों की सिर्फ तीन तीन उंगलियां थी जो काफी मोटी थी और सिरों से नोकीली दिखाई दे रही थी। क्यों बुलाया है तुमने मुझे, इस भयानक मखलूक के मुंह से खूंखवार भेड़िए जैसी आवाज निकली। मुझे तुमसे एक बेहद जरूरी काम है भोपत, इस काम के बदले में तुम्हें इन जंगलों के दो कबीलों के खून की भेंट दूंगा, शदारा ने कहा। तो उसकी बात सुनकर भोपत का मुंह खुशी से खिला मगर फिर फौरन ही बंद हो गया। किन दो कबीलों की भेंट दोगे तुम मुझे, भोपत ने मुंह बनाकर पूछा। मेरे कबीले को छोड़कर इन जंगलों में तुम्हें जो सबसे बड़े कबीले पसंद आए, तुम इन कबीलों के तमाम वहशियों को हलाक करके उनका खून पी सकते हो, शगारा ने अपनी मुसर्रत छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा। वो खुश था कि उसने भोपत को अपनी मर्जी से भेंट मांगने का कोई मौका ही नहीं दिया। ठीक है, बोलो क्या काम है मुझसे, भोपत ने जैसे नाराज से लहजे में कहा। शायद वो इस बात से ना खुश था कि वो शगारा से अपने मतलब की भेंट नहीं मांग सका था। मुझे कटांगा देवी के बारे में तुमसे बात करनी है, शगारा ने कहा। तो भोपत बेख्तियार चौंक पड़ा। कटांगा देवी, ओह क्या बात करना चाहते हो तुम उसके बारे में, भोपत ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे इल्म में आया है कि जंगलों में जो ये तासुर फैला हुआ था कि रोशनी के दुनिया के चंद अफराद ने कटांगा देवी को इसके मदफन में ही फना कर दिया था, वो तासुर कतई गलत है। कटांगा देवी हलाक नहीं हुई है, रोशनी की दुनिया के नुमाइंदों के हाथों इसका जिस्म जरूर जलकर राख हो गया है, लेकिन कटांगा देवी फना होने से बच गई है और उसने अपनी जान इस औरत के साय में छुपा ली है जिसने मदफन से बाहर आते ही उसकी गर्दन उड़ाई थी, शिगारा ने कहा। और फिर वो तस्माना से मिली हुई कटांगा देवी के बारे में तमाम मालूमात से भोपत को आगाह करता चला गया। हाँ, मुझे इन सब बातों का इल्म है, तुम बताओ तुम क्या चाहते हो, भोपत ने सारी बात सुनकर अपने मखसूस लहजे में कहा। पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि कटांगा देवी इस वक्त कहाँ है और वो क्या कर रही है, शगारा ने पूछा। ठीक है, मैं देखता हूँ, भोपत ने कहा और उसने आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों तक उसकी आंखें बंद रही, और फिर उसने आंखें खोल दी। शगारा गौर से उसकी जानिब देखने लगा। क्या हुआ, कुछ पता चला कटांगा देवी का? भोपत को आंखें खोलते देखकर शगारा ने बेचैनी से पूछा। हाँ, मैंने देख लिया है, कटांगा देवी इस वक्त एशिया के मुल्क पाकेशिया में मौजूद है, भोपत ने कहा तो शगारा बुरी तरह से उछल पड़ा। पाकेशिया में? क्या मतलब? कटांगा देवी पाकेशिया क्यों गई है और वो वहाँ क्या कर रही है? शगारा ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। वो अपने कातिलों से इंतकाम लेने गई है, भोपत ने जवाब देते हुए कहा। कातिलों से इंतकाम? मैं समझा नहीं, शगारा ने उसी तरह से हैरत ज़दा लहजे में कहा। कटांगा देवी को उसके मदफन में रोशनी के दुनिया के जिन नुमाइंदों ने फना करने की कोशिश की थी, उनका ताल्लुक पाकेशिया से है, और वो औरत भी पाकेशिया में ही मौजूद है जिसके साए में जम होकर कटांगा देवी ने अपनी जान बचाई थी। कटांगा देवी इस औरत का जिस्म हासिल करना चाहती है और इन तमाम अफराद को हलाक कर देना चाहती है जिन्होंने इसके मदफन में इस पर हमला किया था, भोपत ने जवाब दिया। ओह, क्या कटांगा देवी ने इस औरत का जिस्म हासिल कर लिया है जिसके साए पर उसने कब्जा कर लिया था? शिगारा ने पूछा। नहीं, कटांगा देवी ने चूंकि इस औरत को बगैर बताए उसके साए पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उस पर लाजिम हो गया है कि अब अगर वो इस औरत का जिस्म हासिल करना चाहे तो उसे हर हाल में इस औरत से इजाजत लेनी होगी। अगर औरत उसे अपना जिस्म देने के लिए राजी हो जाए और फिर औरत का जिस्म बेदाग हो, मतलब ये कि उसके जिस्म पर किसी जख्म का निशान ना हो, तभी कटांगा देवी उसके मुर्दा जिस्म में घुस सकती है, वरना नहीं। कटांगा देवी रात के वक्त उसकी औरत के पास गई थी, लेकिन इस औरत ने उसे अपना जिस्म देने से इनकार कर दिया है और उसने खुद को जख्मी करके कटांगा देवी को वहां से वापस जाने पर मजबूर कर दिया था। अब जब तक इस औरत का जख्म ठीक नहीं हो जाता, उस वक्त तक कटांगा देवी उसके पास नहीं जा सकती। उसे इंतजार करना होगा, जब औरत का जख्म ठीक हो जाएगा तो कटांगा देवी फिर उसके पास जाएगी और उसे मजबूर कर देगी कि वो उसकी बात मान जाए और उसे अपना जिस्म देने के लिए तैयार हो जाए, भोपत ने कहा। ओह, क्या कटांगा देवी इस औरत को इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि वो उसका जिस्म हासिल कर सके? शगारा ने कहा। हाँ, कटांगा देवी साया होने के बावजूद बेहद ताकतवर है, वो कुछ भी कर सकती है, भोपत ने जवाब दिया। तो क्या वो इन तमाम अफराद को हलाक कर देगी जिन्होंने उसे फना करने की कोशिश की थी? शगारा ने पूछा। हाँ बिल्कुल, वो इनमें से किसी को नहीं छोड़ेगी, लेकिन इन सब को हलाक करने के लिए उसे सबसे पहले इन सब के अफ्रीका के जंगलों में मौजूद अपने मदफन के पास लाना होगा। वो अफराद जब तक कटांगा देवी के असल मदफन के पास नहीं आएंगे, कटांगा देवी उन्हें हलाक तो नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें शदीद तरीन अजियतों और मुसीबतों से जरूर दोचार कर सकती है, और उसके पास इतनी ताकतें हैं कि वो इन तमाम अफराद को अफ्रीका के जंगलों में अपने मदफन के नजदीक ला सके, भोपत ने कहा। ये बताओ कि अगर मैं कटांगा देवी को अपने ताबे करना चाहूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शिकारा ने सर झटकते हुए कहा। तुम इस वक्त तक कटांगा देवी को मुसख्खर नहीं कर सकते जब तक कि उसे फना करने वाले जिंदा हैं, वो खुद हलाक हो जाएं या कटांगा देवी उन्हें हलाक कर दे, उसके बाद ही तुम कटांगा देवी को अपने बस में कर सकते हो, और उसके लिए तुम्हें सख्त और मुश्किल तरीन अमल करने पड़ेंगे, भोपत ने कहा। कैसे अमल? शगारा ने चौंक कर पूछा। शैतानी अमल, इन अमलों को करते हुए तुम्हारी जान भी जा सकती है, भोपत ने कहा। तुम बताओ तो सही, वो अमल है क्या? शगारा ने कहा। तो भोपत ने इन शैतानी अमलों के बारे में बताने लगा जिनकी मदद से वो कटांगा देवी को तस्खीर कर सकता था। भोपत से शैतानी अमलों के तफसील सुनकर शिगारा के चेहरे पर इंतहाई खौफ उभर आया था। ओह, अमल तो वाकई बेहद खतरनाक और जानलेवा है, लेकिन अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं ये अमल कर सकता हूँ, शिगारा ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सोचते हुए कहा। मेरे साथ से क्या होगा? क्या होगा? भोपत ने जैसे हैरान होते हुए कहा। तुम मेरे मुहाफिज बनकर इन अमलों को पूरा करने में मेरा साथ दे सकते हो भोपत। अगर तुम मेरा साथ देने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें बहुत बहुत बड़े इनाम दूंगा, ऐसे इनाम जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, शिगारा ने उसे लालच देते हुए कहा। ओह, क्या इनाम दे सकते हो तुम मुझे? भोपत ने चौंकते हुए पूछा। मैं सैकड़ों के हिसाब से तुम्हें शैतानी ताकतें दे सकता हूँ, हर रोज तुम्हें बेशुमार इंसानों की भेंट दे सकता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें इन जंगलों में मेरे कबीले के वहशियों का खून बेहद पसंद है। तुम एक बार मुझे कटांगा देवी को हासिल करने में मेरी मदद करो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अपने कबीले के एक वहशी की भेंट दूंगा। तुम इन सबको हलाक करके इनका खून पी जाना, जिस पर मुझे कोई एतराज ना होगा, शगारा ने कहा तो भोपत की आंखों में अजीब शैतानी सी चमक आ गई। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम मुझे वाकई अपना सारा कबीला भेंट में दे दोगे? भोपत ने लालच भरे लहजे में कहा। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, शिकारा ने इस बात में सर हिलाकर कहा। ठीक है, तुम वादा करते हो तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, भोपत ने जवाब दिया तो शिकारा का चेहरा मुसर्रत से खिल उठा। बहुत खूब, लेकिन याद रखो, मेरी मदद के लिए तुम्हें अभी इस वक्त तक मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, जब तक कि मेरे अमल पूरे नहीं हो जाते और कटांगा देवी मेरे बस में नहीं आ जाती। तुम्हें मेरा महकूम बनना पड़ेगा और मेरे हर हुक्म की तामील करनी पड़ेगी। बोलो, मंजूर है? शगारा ने उसकी जानिब गौर से देखते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे कबीले के वहशियों का खून पीने के लिए मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारा हुक्म भी मानूंगा, भोपत ने कहा। पार्ट 1 यहाँ इख्तिताम पजीर होता है।